श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ में लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार, उसमें संक्रमण अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 398 पर आ गए। 398 यहाँ भुजाकार और अल्पतर की बात चल रही है। कल हमने देखा भुजाकार के संबंध में, अभी अल्पतर की बात देखेंगे। ये बीच में ही नीचे से 9वीं लाइन अल्पतर। भुजाकार के बाबत हमने देखा था स्वामी तो उसका देखते हुए कि किसी ने पहले भुजाकार संक्रम किसका होता, तो जो अनुभाग है उससे ज़्यादा अनुभाग बांधा और आवली काल बीत गया तो जितना वहाँ अनुभाग का संक्रम होता था उससे अधिक होने लगा, अधिक स्पर्धकों में से, तो उसको कहेंगे कि भुजाकार। अब अल्पतर की बात बता रहे हैं, यहाँ लिखा है अल्पतर संक्रम अनुभाग कांडक घात के बिना नहीं होता। अल्पतर ने पहले जितना है उससे कम, क्योंकि जितने स्पर्धक है उतने तो है ही, उसमें से कुछ परमाणुओं का संक्रमण होता है, स्पर्धक तो बने रहते हैं। तो अल्पतर कब होंगे, जब स्पर्धकों का घात होना चाहिए, पूरे स्पर्धक मिटने चाहिए, वो कब होगा, अनुभाग कांडक घात होने के बाद। ये बात ख्याल में आती है ना, अकेला अनुभाग घटना एक दो परमाणु का, उसको अल्पतर नहीं कहेंगे। जैसे हमने निषेक में से क्या देखा, कितने निषेकों में से परमाणु अपकर्षित होते हैं, वैसे यहाँ कितने स्पर्धकों में से परमाणु अपकर्षित होते हैं। अपकर्षित होना नहीं, उनका अनुभाग घटना। तो थोड़े परमाणुओं का अनुभाग घटा तो भी स्पर्धकों की संख्या उतनी की उतनी रहेगी। हमने देखा था ना, 1000 है मान लेते स्पर्धक, उसमें से थोड़े थोड़े परमाणुओं का अपने अपने नीचे के स्पर्धकों के समान अनुभाग हो जावे, फिर भी 1000 तो 1000 स्पर्धक रहेंगे कायम। जब अनुभाग कांडक घात होता है तो टॉप वाले, जो टॉप मोस्ट अधिक अनुभाग वाले स्पर्धक ही नाश हो जाते। अभी 1000 के बदले हम मान लेते 900 रह गए तो वो अल्पतर हो जाएगा। ये बात ख्याल में है। जैसे निषेकों में भी हम देखते हैं निषेक कब कम हो जाएंगे, हाँ उसमें भी घात वगैरह हो जाता है। अब ये कांड घात की बात है, यानी अपकर्षित की बात है। जो उत्कीर्ण किए जाने वाले अनुभाग कांडक को उत्कीर्ण कर चुका है, वह अनंतर समय में उसका अल्पतर संक्रामक होता है। उत्कीर्ण करने ने नहीं, कांडक पूर्ण है, उत्कीर्ण काल उसका कहेंगे ना, यानी कांडक का काल, क्योंकि अनुभाग कांडक होने का एक समय दो समय करके एक छोटे से अंतर्मुहूर्त में अनुभाग कांडक का काल पूरा हुआ। तो हमने देखा ना 1000 उसमें से स्पर्धक थे, तो ऊपर के 100 स्पर्धकों का नाश होने वाला है, तो एक एक लॉट करके, एक फाली दो फाली तीन फाली करके उतने स्पर्धक नष्ट हो जाएंगे, घात हो जाएगा उसका, तो हम कहेंगे उसका उत्कीर्ण हुआ। ये उत्कर्षण की बात नहीं है। इन्हें अनुभाग कांडक का घात पूर्ण होना, कांडक घात भी कहते हैं, उत्कीर्ण भी कहते हैं। उत्कीर्ण कर चुका है ना, घात कर चुका है, यानी वो जो उत्कीर्ण करना, नीचे आना, उसका कार्य समाप्त हुआ, प्रोसेस समाप्त हुआ। वह अनंतर समय में उसका अल्पतर संक्रामक होता है। तो जब तक घात कर रहा है तब तक वो उतने के उतने में से आ रहे नीचे। घात पूर्ण होता है तो स्पर्धकों की संख्या कम हो गई, तब उसको अल्पतर कहेंगे। नेक्स्ट मोमेंट में, अनुभाग कांडक पूरा होने के पश्चात वाले समय में उसको अल्पतर अनुभाग संक्रम कहेंगे। अवस्थित संक्रामक कौन होता है? भुजाकार अल्पतर, कॉमा लगाना बीच में, और अवक्तव्य संक्रामक से भिन्न जीव अवस्थित संक्रामक होता है। यानी जो भुजाकार नहीं है, अल्पतर नहीं है, अवक्तव्य नहीं, वह अवस्थित है। शेष चार ज्ञानावरण, ये मति ज्ञानावरण के बाबत में अल्पतर बताया, तो कहते हैं शेष चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मिथ्यात्व की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों के संबंध में कहना चाहिए। विशेष इतना है, यहां अवक्तव्य संक्रामक भी होता है। 16 कषाय और 9 कषायों के बारे में, हाँ, अवक्तव्य संक्रामक भी होता है, यानी पहले नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है। श्रेणी में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम होता है, उनका भुजाकार संक्रम नहीं होता। भुजाकार में हमने क्या कंडीशन देखी थी? हाँ, नया अधिक बंध, अधिक अनुभाग को बंधना नहीं, बंधेगा तो यह तो बंधता नहीं है। चार आयु कर्मों, सादी सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों, सादी सत्कर्मिक यानी जिनकी सत्ता, जिनका सत्व उसको आदि है। ऐसे कोई नाम प्रकृति आपको मालूम है जिसको आदि है, सत्ता में जिसको आदि हो जाती है? देखो उसमें ऐसे होते ना, जो विधुवेल ना होने वाली होती है, नरक गति है, देव गति है, हमने वैकिरिक शटक देखे थे, उच्च गोत्र है, हाँ, तो इसको कहेंगे सादी सत्कर्मिक, क्योंकि उद्वेल ना हो गई और फिर दोबारा बांधेंगे तो फिर उसका सत्व चालू हो गए, आहार की भी बात है। तो कहते हैं वो ज्ञानावरण के समान है। विशेष इतना है कि इनका अवक्तव्य संक्रम भी होता है, क्योंकि सत्ता में नहीं था, बांधने के बाद उसका शुरू हो गया, तो कहेंगे अवक्तव्य। तीर्थंकर नाम कर्म का भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम होता है, किंतु उसका अल्पतर संक्रामक नहीं होता, क्योंकि उसके स्पर्धक बढ़ते भी है उतने भी उसका संक्रम हो सकेगा। अवक्तव्य भी होता है, क्योंकि पहले नहीं थे बांधे हुए और फिर अभी बांधे हैं, तो उसमें अवक्तव्य संक्रमण भी होगा, परंतु अल्पतर नहीं होगा, यानी उसके जितने स्पर्धक है उसमें कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। अनादि सत्कर्मिक, वो तो रह गया आधा, सकर्मिक वो ना सत्कर्मिक, अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों, अनादि से जो सत्ता में है ऐसे जो नाम प्रकृतियां हैं, निज गोत्र और 5 अंतराय की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। तो इनमें अवक्तव्य होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, ज्ञानावरण में अवक्तव्य नहीं होगा, क्योंकि कभी अनुवाक संक्रम था ही नहीं और फिर शुरू हुआ। यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी पहले आई होगी ना। नहीं लिखा तो नहीं है, परंतु उसमें वो बात घटित नहीं होगी। अभी हम काल की बात देखेंगे, 399 प्रश्न 99 पर। एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपना की जाती है। जब काल कहेंगे तो लगातार भुजाकार भुजाकार का एक साथ कितने समयों तक होगा भुजाकार, उसको काल कहेंगे। तो कहते ज्ञानावरण के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और वह उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। हाँ, कहीं कहीं भुजाकार लिखते हैं, भुजाकार लिखते हैं, भुजाकार लिखते हैं, क्योंकि प्राकृत में भुजाकार कहते हैं, उसका भुजाकार कहा, परंतु उसको भुजाकार भी लिखते हैं। हिंदी में तो भुजाकार ही अधिक से लिखते हैं। अल्पतर संक्रामकों का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। अल्पतर कब होता है? कांडघात हुआ तो एक समय में घटित होगा, दूसरे समय में फिर दोबारा नहीं होगा, वो तो फिर अवस्थित रहेगा कुछ काल तक। यहाँ निषेकों की बात नहीं, यहाँ तो स्पर्धक कम होते हैं कि नहीं ये सब देखना हमें। अवस्थित संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। ज्ञानावरण की भी बात चल रही है, यहाँ ज्ञानावरण की बात है। उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, नौ नौ कषाय, सब नाम प्रकृतियों, उच्च गोत्र, नीच गोत्र और पांच अंतराय की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। विशेष इतना है कि आहार चतुष्क के अवस्थित संक्रामक का काल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र है। इसी प्रकार बाद में उसकी वो उद्वेलना समाप्त हो जाती है, उसमें कुछ अनुभाग कांडक घात तो नहीं होंगे, उतने के उतने स्पर्धक बने रहेंगे और उसमें से कुछ कुछ परमाणु संक्रमित होते होते फिर वो नष्ट हो जाएगी, तो पल्ले के असंख्यात भाग तक उसका अवस्थित संक्रामक होगा। इसी प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भी संबंध में कहना चाहिए, वो भी उद्वेलना होने वाली प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि इनके अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त मात्र है। तीर्थंकर नाम कर्म के भुजाकार संक्रम, उसके ऊपर बिंदी चाहिए, रफार हो गया। तीर्थंकर नाम कर्म के हमने देखा था ना, उसमें अल्पतर नहीं होते, भुजाकार अवस्थित और अवक्तव्य होते। भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। उसके पहले से ज्यादा उसके स्पर्धक हो गए तब एक ही समय घटित होगा, अनुभाग भी बढ़ेगा फिर भी पूरा स्पर्धक का स्पर्धक नहीं बढ़ेंगे। उसी का विषय चल रहा है। भुजाकार ने पहले, हाँ, अभी स्पर्धक बढ़ गए तभी उसका अनुभाग संक्रमण बढ़ेगा एक समय के लिए, बाद में नहीं बढ़े, उतने रहेगा। और उत्कर्ष से लगातार बढ़ता रहे तो अंतर्मूर्त तक। उसके अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है। चार आयु क्रमों के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। जब तक वो बंद हो रहे ना आयु कर्म का, तो भुजाकार संक्रामक कहेंगे हम। इनके अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय है। हमने स्थिति में देखा था, स्थिति में तो एक एक निशेक गल जाएगा, वहां तो अल्पतर लगातार हम कहेंगे इतने 33 सागर तक भी होते हैं, परंतु यहां अनुभाग की बात है, कितने निशेक गलते हैं उस पर नहीं है, जो निशेक बाकी है उसमें स्पर्धक कितने हैं उसकी बात है। उत्कर्ष से वह देवायु और नारकायु का साधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट की बात है, अवस्थित रूप से उत्कृष्ट काल कितना है। जघन्य तो एक समय घटित किया, और उत्कृष्ट कितना हो सकता है। देवायु और नारकायु का साधिक 33 सागरोपम तथा और मनुष्य व तिरंच आयु का साधिक 3 पल्योपम मात्र है। वो तो बंधने के बाद तब से लेना उसको। तिर्यंच में य के ऊपर अनुस्वार चाहिए, बिंदी। काल के आश्रय से अंतर को भी ले जाना चाहिए। जब काल घटित होता है तो उसका अंतर भी हमें निकालना चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय काल और अंतर को भी सिद्ध करके ले जाना चाहिए। अब अल्प बहुत्व की प्ररूपणा की जाती है, यानी ज्ञानावरण के अल्पतर करने वाले ज्यादा है कि भुजाकार करने वाले ज्यादा है उसकी बात है। ज्ञानावरण के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है, भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार नौ दर्शनावरण साता वेदनीय असाता वेदनीय मिथ्यात्व 16 कषाय और नौ नौ कषायों के भी अल्प बहुत्व का कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि 16 कषाय और नौ नौ कषाय के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है। अल्पतर अनुभाग संक्रामक अनंत गुणे हैं और भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। स के ऊपर बिंदी लगाना। अल्पतर हमने देखा था ना, अल्पतर कब होते हैं, कांडक घात होते हैं, तो एक इंद्रियों में तो हत समुत्पत्तिक होते हैं सारे, कितने वो सूक्ष्म एक इंद्रिय कहो बादर एक इंद्रिय कहो, उसमें वो घात होते रहते हैं ना, तो वहां कांडक होते हैं उनके। क्योंकि अनंत गुणा तो एक इंद्रिय में वहीं पर घटित होगा ना। हत समुत्पत्ति का है ना, उसको उसकी घटते चले जाते, घात होता है उसका, अनुभाग की भी और स्थिति का भी घात होता है। ये भुजाकार हमने असंख्यात गुणे लिखे, अवस्थित अनुभाग अनुभाग हुआ, अनुभाग अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं, उतना का उतना करने वाले उससे भी ज्यादा है, संख्यात गुणा है। सम्यक्त्व ये भुजाकार समझ में है, अभी पहले हत समुत्पत्ति कर दिया और फिर अन्य कहीं उत्पन्न हुआ और अधिक बांधा अनुभाग, तो भुजाकार कहेंगे, वो असंख्यात गुणे हैं। अवस्थित अनु उद्वेलन योग्य तो प्रकृति थोड़ी, यहाँ तो ज्ञानावरण आदि की बात चल रही है और कषायों की। हाँ हाँ, जो उद्वेलना योग्य प्रकृतियां है ना, हाँ होती है, हाँ विशिष्ट काल में होती है उसकी। पल्ले का संख्यात्व भाग है, जैसे आहारक बांधी है और मिथ्यात्व में चला गया तो इतने काल पश्चात उसका वो उद्वेलना चालू हो जाती है, जो होगा कुछ अंतर्मूर्त आदि जो कुछ उसकी लिमिट है वो। हमने सम्यक के बारे में भी देखा था ना, सम्यक तो सम्यक प्रकृति वाला मिथ्यात्व में गया है तो इनमें जाते ही उसी समय नहीं होता है, वो तो अंतर्मूर्त काल भी जाता है, बाद में यथा योग्य काल जाने पर उसकी उद्वेलना भी चालू हो जाती है। तो उसकी उद्वेलना नहीं है, अंतर्मूर्त में नहीं उद्वेलना होती, उसके अंतर्मूर्त तक उसको अध प्रवृत्त कहा था, अध प्रवृत्त संक्रमण होता है वहां पर, और बाद में उसकी उद्वेलना अलग है अध प्रवृत्त अलग है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है। हमने अल्पतर अनुभाग में क्या देखा था, कांडक घात। अब इनमें कांडक घात कब होगा, हाँ विशुद्धि बढ़ेगी और ये क्षय के प्रोसेस में होगा। अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। नारकायु के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है। अवक्तव्य चाहिए, अवक्तव्य हुआ, अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं। आयु में हमने कैसा देखा था अल्पतर, आयु में अल्पतर उसके स्पर्धक कम हो जाएगा, नाम प्रकरण ज्ञानावरण के समान है ऐसा कहा था। काल की बात नहीं है, भुजाकर का स्वामी 398 पृष्ठ पर नीचे नीचे की सेकंड लाइन, चार आयु कर्म और सादी सत्कर्मिक प्रकृतियां जो है वो ज्ञानावरण के समान है, विशेष इतने उनका अवक्तव्य संक्रमक भी होता है, यानी पहले वो आयु का संक्रमक नहीं था बंदे की, उसके बाद यहाँ क्या पढ़ा हमने, अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है। अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं और भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, यानी सबसे ज्यादा अवस्थित अनुभाग संक्रामक है। देव हाँ, बंद की अपेक्षा ही भुजाकार होगा, बढ़ता है ना। तो असंख्यात गुणे वो तो अंतर्मूर्त काल लगातार है, इसलिए उस अपेक्षा से असंख्यात गुणा घटित होगा। देवायु के इस अल्प भूतों की प्ररूपणा नारकायु के समान है। मनुष्यायु के अल्पतर अनुभाग संक्रामक स्तोक है। अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक विशेष अधिक है। भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। वे मनुष्य समूर्छन जो है लब्धि पर्याप्त, उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणा। अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणा है। तिर्यक आयु के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है। अल्पतर अनुभाग संक्रामक अनंत गुणे हैं। अभी तिर्यंचों की संख्या के कारण इसको भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं। मनुष्य इसमें वो अनंत गुणा का डिफरेंस है, वह असंख्यात गुणा का। और या हाँ वक्तव्य तो सब जगह लिया, हाँ अल्पतर पहले लिया था, यहाँ वक्तव्य पहले लेकर बाद में अल्पतर लिया। अब गति की बात है, नरक गति के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है। अवक्तव्य ने भी उद्वेलना हो गई और फिर बंधित तब शुरू हो जाएगा। आयु में तो समझ में आता है, गति में तो उद्वेलना होनी चाहिए। भुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अल्पतर अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। देव गति और वैकिरिक शरीर की प्ररूपणा नरक गति के समान है। मनुष्य गति के अवक्तव्य व करना को का अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है, अल्पतर अनुभाग संक्रामक अनंत गुणे हैं। गति नाम कर्म है, पर करने वाले तो ये सारे एक इंद्रिय हो गए। अल्पतर करने वाले कौन हो गए? जब हत समुत्पत्ति हो गए ना, वो मनुष्य गति का वहां स्थिति भी कम हो रही है, अनुभाग भी कम हो रहे। कांडघात की अपेक्षा परंतु अनंत गुणा जो घटित किया है वो तो एक केंद्र में होगा। गुजाकार अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि वह समुत्पत्तिक में से फिर ज्यादा बांधेंगे तो भुजाकार हो जाएगी। अवस्थित अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं, उच्च गोत्र की प्ररूपना मनुष्य गति के समान है, क्योंकि उसकी भी उद्वेलना योग्य प्रकृति है, इसलिए वहां भी ये घटित होगा। अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों नीच गोत्र और पांच अंतरायों की प्ररूपना ज्ञानावरण के समान है। आहार शरीर के अवक्तव्य अनुभाग संक्रामक स्तोक है, भुजाकार अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं और अल्पतर अनुभाग संक्रामक संख्यात गुणे हैं, अवस्थित अनुभाग संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की प्ररूपणा आहार शरीर के समान है, इस प्रकार अनुभाग भुजाकार संक्रम समाप्त हुआ। एक्चुअली अल्पगोत्र अवस्थित सबसे ज्यादा है। अच्छा, भुजाकार पहले लिया और फिर बाद में अल्पतर लिया, और ज्ञानावरण आदि में क्या लिया था? अल्पतर पहले नंबर पर था, वहां तो अवक्तव्य की बात नहीं थी। पहले अल्पतर लिया, बाद में भुजाकार लिया था। भुजाकार में तो उसका अधिक बंध ज्यादा होता है, तो वहां उत्कर्षण वगैरह उसमें होगा। भुजाकार में उद्वेलना वाली है, तो उद्वेलना वाली में अवस्थित लिया। हाँ, अल्पतर उससे ज्यादा लिया। अल्पतर अनुभाग संक्रामक कब कहलाएगा? हाँ, तो संख्यात गुणे ही कहा उसको, यानी वो जो आहार शरीर वाले जो है उनको ही लिया उसमें संख्यात गुणा। और ये हाँ, उससे भी संख्यात गुण है ना, वो तो कांडक घात उसमें भी होगे, वहां पर घटित होगा। अल्पतर एक्चुअली कांडक घात ये शुभ प्रकृतियों में तो ऐसा नहीं होगा ना, उद्वेलना में अल्पतर होगा, उद्वेलना में भी अवस्थित ज्यादा होगा क्या, अल्पतर में वो सत्कर्मिक वहां भी लेना। अल्पतर कब होगा उसका, अल्पतर का स्वामित्व देखो। तो कांडक घात उनका जो, इसका जो कांडक है वो तो एक इंद्रियों में होगा ना जाने के बाद, क्योंकि शुभ प्रकृति है, श्रेणी में तो उसका कांडक घात नहीं होगा। तभी उसका अल्पतर घटित होगा। अवस्थित जो है ना, अभी वो बांध कर चले गए केंद्रियों में, कितने ही होगी ना जिन्होंने पहले बांधी है, चालू हो जाएगी, परंतु वो पल्ले के असंख्यात पे भाग काल तक कितने तो आहारक बांधने वाले उसमें आते रहेंगे ना। संक्रमण कब होगा उसका, तो उसके उतने के उतने रहने चाहिए। हाँ, तो ये असंख्यात गुणे कहा, तो ये अन्य जो उद्वेलना वाली है वहीं पर ले सकते हैं ना अवश्य, जो उसको उद्वेलना में कांडक उतने ही रहेंगे, ये कांडक नहीं स्पर्धक उतने ही रहेंगे ना, थोड़े थोड़े परमाणु के। वो मिथ्यात्व में गया है वो उद्वेलना करने वाला, अभी ये जो कांडक कहाँ होगा, एक इंद्रियों में जाने पर होगा। देखो यहाँ पर हम उसका स्वामी लिखना, आहार की वहां बात ही नहीं की है, 398 पर हमने देखा था। सादी सत्कर्मिक है ना ये सारे, वो वक्तव्य संक्रमण होता है, बस इतना ही। देखो उसका काल एक जीव की अपेक्षा हम देखते हैं, तो उसकी अपेक्षा से हमें ख्याल में आए 399 पर, एक जीव की अपेक्षा काल की बात आई ना, उसमें तीन की छठी लाइन विशेष इतना है कि आहार चतुष्क के अवस्थित संक्रामक का काल पल्लवम के असंख्यात विभाग मात्र है, ते उद्वेलना करने वाले ही है, और उतना काल है इसलिए उतने जीव इकट्ठे हो गए, उस अपेक्षा से उसको असंख्यात लेना, वही कहा था मैंने। आगे पढ़ेंगे 401 में आना। अल्पतर बताए ना, अल्पतर भी वो हतसमुत्पत्ति करने वाले होगे वहां पर, या कांडक घात तभी तो होगा ना, हमने देखा था। भुजाकार तो बंधने के काल में होगा, कौन सा प्रोसेस, बंधने के काल में होगा भुजाकार, बंधने के बाद जब उसका आवली बीत जाती है तभी हमने देखा था उसको। हमने देखा था ना, ज्यादा अनुभाग बांधता है और बंधावली के बाद उसको संक्रमण होता है तब उसको भुजाकार कहते हैं। कहते तीर्थंकर नाम कर्म की प्ररूपना आहार शरीर के समान है, इस प्रकार अनुभाग भुजाकार संक्रम समाप्त हुआ। उसमें अल्पतर नहीं कहा था ना, हमने पहले बताया था उसमें 399 पर बताया था अल्पतर नहीं होते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पद निक्षेप की प्ररूपणा करते हैं। पद निक्षेप का अर्थ वृद्धि जो है ज्यादा कहाँ होती है, हानि जहाँ ज्यादा कहाँ होती है उसकी बात करेंगे। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है, जो तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग सत्कर्म के साथ उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ है और तत्पश्चात जिसने उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया है उसके आवली मात्र काल के बीतने पर उसकी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि और अवस्थान भी होता है, यानी वृद्धि होकर उतना ही रहना उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। समझ में आए कौन जीव लिया? पहले तो जघन्य अनुभाग सत्कर्म, सत्कर्म ने सत्ता वाले कर्मों का अनुभाग जघन्य था, अनुभाग जघन्य था यानी उदय की बात नहीं है, सत्कर्म की सत्ता में अनुभाग जघन्य का अर्थ क्या है, स्पर्धकों की संख्या कम है। हाँ, परंतु वो मिनिमम से लेकर हम ये जैसे 100,000 पकड़े थे तो ये 100 हो गए हम मान लेते हैं। जैसे हम निषेकों को घटाए थे, वो हाथ समुत्पत्तिक वाला निषेक घटाता है तो अनुभाग भी वहां घटते हैं, तो यहाँ कम अनुभाग वाला, कर्म अनुभाग वाला है अकेला, उसके नंबर ऑफ स्पर्धक कितने हैं, तो वो मिनिमम है। तो उसके साथ अभी उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होने पर क्या होगा, वो अधिक अनुभाग बांधेगा, जहां संक्लेश ज्यादा है तो उत्कृष्ट अनुभाग बांधेगा तो स्पर्धक बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आवली काल के बाद उनमें जो कुछ संक्रमण चलेगा वो अनुभाग जघन्य वाले थे ना उसका उत्कर्षण हो जाएगा, या उसमें से जो कुछ है उसमें से अपकर्षण आदि चलेगा तो उसका संक्रमण होगा, उसको उत्कृष्ट संक्रमण या उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कहेंगे। उस एकेंद्रिय में गया है अभी, वहां से वो पंचेंद्रिय में है और उत्कृष्ट संक्लेश किया, ऐसा भी ले सकते हैं, या अन्यत्र कहीं पर जाकर उसने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया। स्थिति के लिए तो हमने उसको ही लिया था, पंचेंद्रिय में लिया था। जो अभी हानि किसके होती है, उत्कृष्ट हानि जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से उत्कृष्ट अनुभाग का घात करता है, उसके अनुभाग कांडक का घात कर चुकने पर, यानी पहले में पहले उत्कृष्ट अनुभाग सत्व था, उसने उत्कृष्ट अनुभाग का घात करते हुए अनुभाग कांडक समाप्त कर लिया, घात कर चुकने पर है ना, वहां क्या शब्द आया था, उत्कीर्ण करने पर। हाँ, अनंतर काल में शेष अनुभाग सत्कर्म का संक्रम करते समय उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम की हानि होती है, ये ख्याल में आई बात। इस प्रकार सब अप्रशस्त कर्मों के संबंध में कहना चाहिए, क्योंकि अनुभाग कांडक घात है वो अप्रशस्त कर्मों में होगा। साता वेदिनी की उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? वह एक समय अधिक आवली मात्र कालवर्ती अकषाय क्षपक के होती है। ये किसको लेना? हाँ, किसको लेना? देवेंद्र भाई, एक समय अधिक आवली मात्र ने किसको लेना? आप सबको, सभी गुण स्थानों को लेते तो सभी में वृद्धि होती रहती है क्या? वृद्धि की बात चल रही है। कब किया? हाँ, यानी दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में मैक्सिमम बंद किया, उसके बाद आवली बीत गई और फिर वो दूसरा एक समय, इसलिए एक समय अधिक आवली किया। ग्यारहवा नहीं, बारहवें का लेना, क्षपक लेना है, उसकी विशुद्धि ज्यादा है ना वहां पर। तो वहां साता वेदनी के उत्कृष्ट वृद्धि हुई, वो वृद्धि तो एक समय में हुई, ये उत्कृष्ट पने जो है बाद में तो वृद्धि नहीं होने वाली है। तो उत्कृष्ट पने भले वो तेरहवें तक रहे, बाद में भी रहे, तो उसकी बात नहीं है, संक्रम तो तेरहवें तक रहे। हाँ, तो कहते हैं उसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक के द्वारा बांधे गए साता वेदिनी के अनुभाग को मिथ्यात्व को प्राप्त हो, उत्कृष्ट अनुभाग कांडक द्वारा घात कर शेष अनुभाग का संक्रम कर रहा है, उसके उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कांडक घात करता है, हाँ, कौन सा? हाँ, हत समुत्पत्तिक वाला, एक इंद्रियों में हमने देखा ना, सूक्ष्म में जाएगा और घटेगा। दसवें में थे है ना, वहां उत्कृष्ट अनुभाग बांधा, अभी बारहवें में जाने वाले को नहीं लिया है, क्योंकि वो तो वापस उसका घात होगा ही नहीं। तो साता वेदिनी शुभ प्रकृति है, अब क्रम से वो छठे में गए, फिर मिथ्यात्व में गए, फिर वो आयु बांधी और फिर वो सूक्ष्म में चले गए, ये सब बीच वाला समझ लेना बिना लिखा हुआ, टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। तो वहां उत्कृष्ट अनुभाग कांडक घात किया उसने, और फिर जब कम अनुभाग का संक्रम करेगा तो उसको उत्कृष्ट हानि होती है, उसका उत्कृष्ट अवस्थान वृद्धि में होता है। उत्कृष्ट अवस्थान वृद्धि में होता है ना, वृद्धि करने के बाद उतना का उतना रहा उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। यश कीर्ति और उच्च गोत्र की प्ररूपणा साता वेदिनी के समान है। यहां अर्थपद अब कहते हैं, यहाँ अभी जो हमने पढ़ा ना उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। उत्कर्ष से साता वेदिनी के अनुभाग घात को मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि ही करता है। यहाँ तो कुछ कौन से गति का है ऐसा नहीं लिखा है, अनुभाग का घात करने वाला है वो मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि है। उसका घात न अतिशय विशुद्ध जीव ही करता है और न अतिशय संक्लिष्ट भी, इसका कारण स्वभाव ही है। इस प्रकार सब प्रशस्त कर्मों के संबंध में कहना चाहिए। अभव्य योग्य साता वेदिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के अनंत बहुभाग को मिथ्यादृष्टि जीव मध्यम परिणामों के द्वारा घातता है। अभव्य योग्य उत्कृष्ट अनुभागों में से जितने मात्र स्पर्धकों को वह मध्यम परिणामों के द्वारा घातता है, सूक्ष्म सांप्रायिक द्वारा रचे गए उत्कृष्ट अनुभाग का भी घात करने वाला जीव उतने मात्र ही स्पर्धकों को घातता है। इस कारण भव्य अथवा अभव्य के द्वारा रचित उत्कृष्ट अनुभाग का मध्यम परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि के द्वारा अनुभाग कांडक स्वरूप से घात कर चुकने पर अनुभाग संक्रम की उत्कृष्ट हानि होती है। क्या कहना चाहते हैं? अभव्य के योग्य जितना अधिक से अधिक साता वेदनीय बांधा जाता है उसका भी उतना ही घात होता है, ऐसा कहते हैं मध्यम परिणामों के द्वारा। यहां तो कोई सूक्ष्म की या एकेंद्रियों की बात नहीं ली है, साता वेदनी में उसको नहीं लिया है, मिथ्या दृष्टि लिया है, जो मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि लिया है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। असाता बनती है, संकलेश वाले को असाता बनती है। घात समान है, कितने स्पर्धकों का घात होता है उसकी क्वांटिटी समान है। मान लेते 100 स्पर्धक नष्ट हो जाते तो उसकी क्वांटिटी दोनों जगह समान है। वहां ज्यादा अनुभाग बांधा था और उसका घात होकर जो रिमेनिंग है, हाँ, कांडक का प्रमाण समान है। मति ज्ञानावरण की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है, ये उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि की बात हमने देखी थी। ये उत्कृष्ट हानि किसके होती है तो हमने देखा ना, साता वेदनीय बांध कर अभी मिथ्या दृष्टि हुआ है और मध्यम परिणाम उसके हुए हैं। अब मति ज्ञानावरण की ये जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि, मिनिमम पॉसिबल वृद्धि कहाँ होती है ये बात करनी है। वृद्धि की बात चल रही है मिनिमम। अतः समुत्पत्ति क्रम से जघन्य अनुभाग सत्कर्म को कर चुकने वाला जो सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव अपने जघन्य सत्कर्म की अपेक्षा प्रक्षेप अधिक बांधकर आवली अतिक्रांत उसका संक्रम करता है, उसके मति ज्ञानावरण की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। ये क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ देखी थी हमने? वही लिया था, जघन्य सत्कर्मिक वाला था और उसने उत्कृष्ट संकलेश द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है तो वृद्धि एक साथ बहुत बड़ी ना। अब यहाँ कहते मिनिमम पॉसिबल वृद्धि होनी चाहिए, तो जिसने ऑलरेडी जघन्य कर दिया है हत समुत्पत्ति, और उसकी वृद्धि थोड़ी मिनिमम पॉसिबल वृद्धि हुई उसकी। जघन्य प्रक्षेप का ना, प्रक्षेप अधिक बांध कर, प्रक्षेप यानी उसमें एडिशन करना थोड़ा अधिक जी। हाँ, वो सूक्ष्म एकेंद्रिय ही अपने अपेक्षा प्रक्षेप अधिक बांध कर थोड़ा अधिक बांधा उसने, वो थोड़ा अधिक बांधा वो सूक्ष्म एकेंद्रिय ने, पहले जघन्य कर दिया फिर थोड़ा अधिक बांधा। थोड़ा अधिक यानी जितना थोड़े में थोड़ा बंधा जा सकता है उतना थोड़ा अधिक, इसलिए वो एक प्रक्षेप अधिक बांध कर कहा। फिर बंधने के बाद एक अवली बीत गई तो उसका संक्रम शुरू होगा तो जघन्य वृद्धि कही। अब मान लेते एक स्पर्धक बढ़ा, पहले से एक स्पर्धक बढ़ा, जो कुछ बढ़ते हो गए तो ये मिनिमम पॉसिबल वृद्धि हुई, उसको जघन्य अनुभाग संक्रम। हम्म, एक पंचेंद्रिय वाला ज्यादा करेगा ऐसा लगता है ना, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश जहाँ अनुभाग बहुत ज्यादा बनता है ऐसा लेना वहां। पहले तो उसने हाथ समुत्पत्ति कर दिया था, हाँ उत्कृष्ट संकलेश वाला हुआ, पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट संकलेश होगा उसका। अभी जघन्य हानि किसके होती है? वह जिसके चरम समयवर्ती छद्मस्थ होने में, ज्ञानावरण की बात चल रही ना, एक समय अधिक आवली मात्र काल शेष रहा है, उसके होती है। जघन्य अवस्थान जघन्य वृद्धि में देना चाहिए। जघन्य हानि में क्यों नहीं देना? पीछे तो संक्रम ही रुक जाता है। जघन्य हानि कब है? आवली और एक समय बारहवें शुरू होने पर, नहीं चरम समयवर्ती छद्मस्थ होने में, हाँ अंतिम समय के अंतिम और अंतिम आवली उसकी, तब उसका संक्रम ही रुक जाएगा, तो उसका अवस्थित होने का सवाल नहीं है। इसलिए जघन्य वृद्धि में जघन्य अवस्थान लिया। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण और चार दर्शनावरण के भी कहना चाहिए। निद्रा और प्रचला की भी प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के ही समान है। विशेष इतना है कि जहां पर जघन्य स्थिति संक्रम है वहां पर उसकी जघन्य हानि कहना चाहिए। कहां पर होता है जघन्य स्थिति संक्रम? हाँ देवेंद्र भाई, हाँ हाँ ऐसा गोलमोल नहीं मत बताना। अभी ज्ञानावरण का हमने पार्वे में एक आवली पहले लिया और उसको दो आवली पहले लिया, दो आवली और एक समय। चलो पांच अंतराय कर्मों की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। उसको भी वहीं पर हो जाता है नक्षय, उसको भी वहां लेना। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? वृद्धि की बात है तो वह हत समुत्पत्ति क्रम से जघन्य अनुभाग सत्कर्म को कर चुकने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव के प्रक्षेपदिक बांधकर, प्रक्षेपदिक बांधकर का अर्थ होता है समझ में आता है, प्रक्षेप है ना उसमें ऐड करना, उसको प्रक्षेप कहेंगे। तो मिनिमम पॉसिबल उसमें थोड़ा ज्यादा बांधा उसने, तो एक प्रक्षेप बांधा अधिक। आवली अतिक्रांत यानी आवली बीत जाने पर उसका संक्रम करते समय होती है, क्या होती है? जघन्य वृद्धि। हाँ उसका जघन्य संक्रम कहाँ होता है तो हमने देखा था ना, ये जो आवली और एक समय बाकी है तो ज्ञानावरण की होती है, और इसके दो आवली और एक समय निद्रा और प्रचला, और ये निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि की कहाँ होती है? वृद्धि की बात पहले उठा रहे तो हत समुत्पत्ति किया वही फॉर्मूला है, और थोड़ा अधिक बांधा। संक्रम की बात बता रही हूँ, निकालना जघन्य संक्रम का स्वामी निकालना। 379 ना, 3 जो इनकी जघन्य स्थिति का संक्रामक है, 379 नीचे से दूसरी लाइन, जो इनकी जघन्य स्थिति का संक्रामक है वही उनके जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक होता है। अब जघन्य स्थिति का संक्रामक निकालो, अरे वाह एकदम निकला के 357। काल है वो, काल है, उसके पहले भी चला जाना जहाँ उसका स्वामी होगा। आयु कर्म का किसका होगा? 354 के भी पहले होगा शायद। और 352 में देखो, जिसके चरम समयवर्ती छद्मस्व ने एक समय अधिकावली निद्रार प्रचला का, नीचे से तीसरी लाइन 352 पेज, अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ होने में दो आवली, अच्छा दो आवली और एक समय नहीं, दो आवली और आवली का असंख्या तो भाग शेष रहा है, उसके निद्रा प्रचला का जघन्य स्थिति संक्रम होता है और उसी पॉइंट पर उसका जघन्य अनुभाग संक्रम भी होगा, प्लस आवली का असंख्या तो भाग। पेज 352 पर आ गए ना, जघन्य स्थिति का संक्रामक 379 और 352। यानी दो आवली प्लस असंख्यात समय, ये आवली का असंख्यात होगा। अभी हम आगे का पढ़ रहे थे, पांच अंतराय के बाद तो ज्ञानावरण के समान है, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि का उत्कृष्ट सॉरी जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? तो हमने कहा था तो समुत्पत्ति हुआ, फिर एक प्रक्षेप ज्यादा बांधा और फिर आवली बीत गई और फिर उसका संक्रम शुरू हुआ तो जघन्य वृद्धि हुई। उसी वृद्धिंगत अनुभाग को अंतर्मूर्त में घात कर संक्रम करने वाले के उसकी जघन्य हानि होती है। यानी वो बढ़ा ना, अभी अंतर्मूर्त में फिर उसका घात किया, परिणामों के वेरिएशंस होते हैं, अंतर्मूर्त में परिणाम फिर पलट गए तो उसका घात कर दिया उसने। सत्ता में से नाश नवे में होता है, नवे में आपने देखे 16 प्रकृतियों में 3 ये है और 13 है वो नाम प्रकृतियां हैं, नरक गति गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति गत्यानुपूर्वी, एक केंद्रीय, द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, चतुरेंद्रीय, जाति और स्थावर वगैरह प्रकृतियां, स्थावर सूक्ष्म और सूक्ष्म साधारण और स्थावर, वो प्रकृतियां 3 मिला का नहीं मिला। स्थान वृद्धि का, हाँ अंतिम स्थिति कांडक का चरम समय, हाँ पर स्थिति कांडक कहाँ पर होता है, उसका क्षपक कहाँ से कहाँ तक कहलाया गया, 8वें से क्षपक श्रेणी वाला क्षपक ही कहलाएगा, तो ये अनिवृत्तिकरण वाला कहलाएगा जहाँ स्थिति कांडक रुक जाता है, क्योंकि घात होने के पहले वो रुक जाएगा ना उसका कांडक। वो स्थिति संक्रम की बात, यहां हम उसी समय एक स्थिति कांडक घात में हजारों तो अनुभाग कांडक घात होते हैं, तो अंतिम वो फाली वाला है, अंतिम फाली स्थिति कांडक की, अंतिम समय है तो वहां होने वाले अनुभाग कांड का भी अंतिम समय होगा वो। ये जघन्य वृद्धि और आहानि दोनों पढ़े हमने, पांचवी लाइन में अभी बीच में आ गए। दोनों में से किसी भी एक में जघन्य अवस्थान होता है, यानी वृद्धि करके उतना रहना या हानि करके रहना उतना, वो जघन्य अवस्थान है। सम्यक्त्व प्रकृति की जघन्य अनुभाग संक्रम हानि किसके होती है? प्रकृति की बराबर दिख रहे क्या? प्रकृति को दिख रहे मुझे तो, प्रकृति की वह जिसके चरम समयवर्ती अक्षीण दर्शन मोहक होने में एक समय अधिक आवली मात्र काल शेष है उसके होती है। उसकी जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि नहीं है सम्यक प्रकृति की, जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि नहीं है। उसका जघन्य अवस्थान किसके होता है? वह अंतिम अनुभाग कांडक की द्वितीय फाली में वर्तमान जीव के होता है। अवस्थान कहना चाहिए, अंतिम समय में तो हानि कहलाएगी। हाँ, तो कांडक का जो अंतिम कांडक है तो उसमें समान समान रहे ना, तो वहां तो द्वितीय फाली में, द्वितीय फाली यानी अंतर मुहूर्त तक लगातार वो फाली चलेगी। तो पहले समय और फिर दूसरे समय में उतना का उतना रहा तो उसको अवस्थित कहा। सम्यक मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व की जघन्य हानि किसके होती है? चरम अनुभाग कांडक के प्रथम समय में वर्तमान जीव के, उसकी जघन्य हानि होती है। क्या कहते हैं? द्विचरम कांडक से चरम कांडक में आ गया तभी होगी ना। द्विचरम अनुभाग कांडक से चरम अनुभाग कांडक में आया तो उसके स्पर्धक घट गए, क्योंकि वो तो अनुभाग कांडक का प्रमाण भी छोटा छोटा होता आया था। पहले पहले कांडक बड़े होते हैं, स्थिति के कहो या अनुभाग के कहो, कांडकों का प्रमाण बड़ा बड़ा होता है। बाद में वो इतने घट गए हैं तो कांडक भी छोटे छोटे होते हैं, तो छोटा सा घात हो गया तो जघन्य उसमें हानि हो गई। उसी के अंतर अनंतर समय में उसका जघन्य अवस्थान होता है, यानी चरम अनुभाग कांडक शुरू हुआ, हानि होने के दूसरे समय में उतना ही रहा तो उसको अवस्थित कहेंगे। उसकी जघन्य वृद्धि नहीं है, जैसे हमने सम्यक प्रकृति में देखा वैसे यहां भी जघन्य वृद्धि नहीं होती। अब अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य वृद्धि किसके होती है? अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके दो समय अधिक आवली संयुक्त जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। वृद्धि कहा ना, अब वक्तव्य कहेंगे तो पहले समय में घटित होगा, जितनी पहले थी दूसरे समय में बढ़ गई इसलिए दो समय अधिक लिया, नहीं समझे? वी संयोजना कर दी। वी संयोजना करके एक्चुअली वी संयोजना करके मिथ्यात्व में गया वैसे चाहिए ना। देखो ये आगे समझाए उसको पढ़ेंगे पूरा। हाँ, अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके दो समय अधिक आवली संयुक्त जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। उसकी जघन्य हानि और अवस्थान किसके होते हैं? वे उनकी विसंयोजना करके अंतर्मूर्त संयुक्त जीव के होते हैं, यथा अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करके उससे संयुक्त जीव यद्यपि उत्कृष्ट वृद्धि के द्वारा वृद्धि उत्तिंगत होता है, तो भी उसके अंतर्मूर्त काल तक सूक्ष्म एकेंद्रिय के जघन्य अनुभाग सत्कर्म की अपेक्षा ही नहीं अनंतानुबंधी कषायों का अनुभाग होता है। वह उससे हीन रहकर घात को भी प्राप्त होता है। इसीलिए अंतर्मूर्त संयुक्त उक्त जीव के द्वारा उसके अनंत बहुभाग का घात कर चुकने पर उनकी जघन्य अनुभाग संक्रम हानि होती है। यह सिद्ध है, जघन्य अवस्थान जघन्य हानि में देना चाहिए। यानी विसंयोजन करने के बाद भी वहां मिथ्यात्व में आने की बात नहीं की यहां पर। अनंतानुबंधी चतुष्क के विसंयोजन करके दो समय अधिकावली संयुक्त जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। हाँ, मिथ्यात्व में गए बिना कैसे होगा? यथा के आगे क्या लिखा? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उससे संयुक्त जीव यद्यपि उत्कृष्ट वृद्धि के द्वारा वृद्धिंगत होता है, तो भी उसके अंतर्मूर्त काल तक सूक्ष्म एकेंद्रिय जघन्य अनुभाग सत्कर्म की अपेक्षा ही नहीं अनंतानुबंधी कषायों का अनुभाग होता है। वह उससे हीन रहकर घात को भी प्राप्त होता है। इसीलिए अंतर्मूर्त संयुक्त उक्त जीव के द्वारा उसके अनंत बहुभाग का घात कर चुकने पर उनकी जघन्य अनुभाग संक्रम हानि होती है। यह सिद्ध है, जघन्य अवस्थान जघन्य हानि में देना चाहिए। क्या उसका सत्ता रहता है कुछ? ऐसी क्या बात है? विसंयोजना करके अंतर्मूर्त संयुक्त जीव क्या विसंयोजना करने पर क्या फिर उल्टा हो जाता है क्या? क्या होता है? हाँ, विसंयोजना में तीन करण होते हैं। हाँ, नहीं, वो कर चुका है, विसंयोजना कर दी उसने। वहां भी बात आई थी कि विसंयोजना करने के बाद जघन्य परिणाम से युक्त होता है, तो बंद नहीं है तो क्या उल्टा संक्रमण होता है उसका? क्या नहीं होता? विसंयोजना तो सत्ता में से पूरा नाश हो जाता है। थोड़ा बाकी है क्या? यानी अनंतानुबंधी तो उदय की बात है ही नहीं वहां, क्योंकि सम्यक दृष्टि विसंयोजना करता है। तो सम्यक दृष्टि विसंयोजना करता है तो उसके अनंतानुबंधी के परमाणु को संक्रमित करता रहता है। तो संक्रमित करते करते कुछ बाकी बचे उसकी बात है क्या? है एक समय में तो नहीं होगा। जब विसंयोजना की तो सत्कर्म कहाँ रहा उसका? वो कहाँ रहा उसका, क्या रहता है थोड़ा बाकी, क्या बात है? हाँ हाँ ना, हाँ यानी फिर दोबारा उसका अनुभाग सत्कर्म बढ़ता है, ऐसा ले लेना उसके परमाणु, जैसे हमने देखे उद्वेलना होती क्या वैसे उल्टा हो जाता है, क्या होता है? उल्टा होने का कहाँ सवाल है? कहाँ से होगी सत्ता? अनंतानुबंधी अभी उसकी रूप हो गई है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्णादि हो गई है, तब भी तो उसको भी संयोजना कहते हैं। तो क्या उसके कुछ परमाणु रह गए ऐसा लेना है? उसने बहुत घटाया इसलिए उसको क्यों सत्कर्म कहा वहां पर? हाँ तो विसंयोजना के बाद भी सत्ता में रहता है क्या? आपको कौन पूछ रहा है? ये विसंयोजना के बारे में देखना कहीं। हाँ अरविंद भाई निकालेंगे। हाँ इसमें होगा ना पीछे कुछ उन्होंने विसंयोजना पीछे जो परिशिष्ट दिया है उसमें कुछ विसंयोजना। हाँ विसंयोजन चार पूर्णांक 336, ये कैसे नंबर है? समग्र षटखंडागम के पारिभाषिक शब्द सूची है और 1250 ये देख लेना। चौथे भाग की बात है क्या? चार पूर्णांक 336 का अर्थ क्या है? समग्र धवला की सूची दी है उन्होंने यहाँ पर। ये पृष्ठ लिखे हैं यहाँ पर, और फिर पारिभाषिक प्रारंभ के अंक पुस्तक के आगे के अंक उसी भाग के पृष्ठों के सूचक है। तो ये विसंयोजना के आगे लिखा है चार पूर्णांक 336। विसंयोजना है 49 पृष्ठ पर, परिशिष्ट के 49 पर। हाँ चार पूर्णांक 336 आगे का क्या लेना? 1250 में एक पूर्णांक 250 लेना कि 12 पूर्णांक 50 लेना? 12 पूर्णांक 50 लेना पड़ेगा। 1250 लिखा है ना, 12.50 होगा, देखेंगे कल इसको विसंयोजना के बारे में थोड़ा। ये नहीं, ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, परंतु वहां ये बात नहीं आई कि उसका सत्ता में से कुछ रह जाता है। यानी ऐसा ले सकते कि विसंयोजना करते हुए उसका अनुभाग घट गया है। विसंयोजन उसका घात कर दिया, उसे घात करते 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 करते। हाँ फाली फाली रूप ही होगा घात। यानी वो हत समुत्पत्ति जैसे करता है ना कांडक, तो ये भी करेगा वहां पर। उसने यहाँ लिखा है हत समुत्पत्ति जो है सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव का जो अनुभाग सत्कर्म है उससे भी हीन कर देता है। उसका अर्थ वहां अनुभाग कांडक भी होते हैं ना। ये कल देखना पड़ेगा इसको, अभी तो इतना 10 मिनट है अभी और। देखो ये यथा से फिर पढ़ते हम नीचे से तीसरी लाइन 403 पृष्ठ पर, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उससे संयुक्त जीव यद्यपि उत्कृष्ट वृद्धि के द्वारा वृद्धिंगत होता है तो भी उसके अंतर्मूर्त काल तक सूक्ष्म एकेंद्रीय के जगन्य अनुभाग सत्कर्म की अपेक्षा हीन ही अनंतानुबंधी कषायों का अनुभाग होता है। यानी वो वहां पर जितना है सूक्ष्म एकेंद्रियों का, अंतर्मूर्त के बाद भी उससे भी हीन इसका अनुभाग है। वह उससे हीन रहकर घात को भी प्राप्त होता है, यानी जितना है उससे भी कम भी हो जाता है। इसीलिए अंतर्मूर्त संयुक्त उक्त जीव के द्वारा उसके अनंत बहुभाग का घात कर चुकने पर उसकी जघन्य अनुभाग संक्रम हानि होती है, यह सिद्ध है। जघन्य अवस्थान जघन्य हानि में देना चाहिए, यानी विसंयोजना करने पर भी उसका जो एक सूक्ष्म एक इंद्रिय उनसे भी कम वो कर देता है अनुभाग उसका। अभी वृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी वृद्धि होकर फिर उसकी हानि करेगा। जैसे हमने पहले भी देखा था थोड़ी ज्ञानावरण में, वृद्धि होती है और फिर हानि करता है, एक इंद्रिय में लिया था, वैसे यहां विसंयोजना करने वाले में लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसकी बात कल करेंगे। तीन संज्वलन कषायों की जघन्य हानि किसके होती है? उनकी जघन्य हानि जघन्य अनुभाग बंद का संक्रमण करते हुए उसके अंतिम समय में वर्तमान क्षपक के होती है। गुणस्थान कौन सा होगा? हाँ, नौवा। हाँ, तो सभी एक समय में एक ही बात एक ही जगह होगी कि सबके सबके अलग अलग? हाँ, जैसे क्रोध बंधक काल है तो बंधक काल के बाद भी जो नवक समय प्रबद्ध है उसका जो अंतिम जो है उसका संक्रमण होता है तब उसको लेना। उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान किसके होता है? उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान का कथन सूक्ष्म एकेंद्रिय के जघन्य अनुभाग सत्कर्म में करना चाहिए। देखो हमने श्रेणी के जो गुणस्थान का अभ्यास जब किया था तो हमेशा आता था ना, कितना कर दिया घटाया सत्कर्म उसका, तो असंगी जैसे किया, चतुरिंद्रिय जैसे किया, फिर तीनिंद्रिय जैसे किया, द्विंद्रिय, अभी एकेंद्रिय जैसा उसने किया। सूक्ष्म एकेंद्रिय से भी अब यहाँ वृद्धि की बात है ना, वृद्धि कहाँ होगी? अभी क्षपक में तो वृद्धि होने से रही, वहां तो वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि यहाँ जहां जघन्य कर दिया है और फिर बढ़ गया उसको वृद्धि कहलाएगी, वो सूक्ष्म एकेंद्रिय में लेना। अनंतानुबंधी में उन्होंने यही बात की कि वहां इतना घटाया था और फिर थोड़ी बढ़ गया या बढ़कर फिर हानि हुई, तो जघन्य वृद्धि और हानि वहां बताया था। पुरुष वेद की प्ररूपना उपर्युक्त तीन संज्वलन कषायों के समान है। संज्वलन लोभ की जघन्य अनुभाग संक्रम हानि किसके होती है? अभी ये आसान है ना, वह अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होने में जिसके एक समय अधिक अवली मात्र काल शेष है उसके होती है। जहां जघन्य स्थिति संक्रम होता है वहीं पर ये जघन्य अनुभाग संक्रम होता है। उसकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान किसके होता है? जघन्य सत्कर्म की अपेक्षा प्रक्षेप अधिक बांधने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के उसकी जघन्य वृद्धि व अवस्थान होता है। हाँ, पर वहां बंद ज्यादा होगा। अब ये सूक्ष्म हमें जघन्य में जघन्य वृद्धि चाहिए, वृद्धि का जो प्रक्षेप है वो कम से कम चाहिए, वहां ज्यादा वृद्धि होगी। या आप ऐसा भी देखना, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? लोभ की बात चल रही है ना। लोभ का बंद कहाँ हो रहा था? नवे के अंत में। नवे के अंत में कितना बंद होता है या सत्ता कितनी पड़ी है वहां पर, ऐसा लेना उसका प्रोपोर्शन। सूक्ष्म एकेंद्री ने उससे भी कम कर दिए। देखो ये हमने पढ़ा उसके अभियान, 8-9 कषायों की जघन्य हानि किसके होती है? ये कौन सा 9 कषाय टाला इसमें? पुरुषवेद की बात आ चुकी है ऊपर, पुरुषवेद बिना ये 8 है। वो जघन्य हानि किसके होती है? अंतिम अनुभाग कांडक के प्रथम समय में वर्तमान जीव के, उसकी जघन्य हानि होती है। ये समझ में आता है? द्विचरम कांडक से चरम कांडक में आया तो उसकी हानि हो गई। उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान किसके होता है? अपने जघन्य अनुभाग सत्कर्म से प्रक्षेप अधिक अनुभाग को बांधने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के, उनकी जघन्य वृद्धि और अवस्थान होता है। प्रक्षेप अधिक अनुभाग बांधा ना, तो अनुभाग बंद अध्यवसान के जो स्थान थे वो एक स्थान ऊपर चला गया, तो उसने एक प्रक्षेप अधिक अनुभाग बांधा। अनुभाग बंद के भी स्थान देखे ना हमने, ऐसे समझना उसमें, तो उतना अनुभाग ज्यादा बांधा, उसको एक प्रक्षेप अधिक बांधा कहेंगे। अब सादी सत्व वाली नाम प्रकृतियों की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि किसके होती है? संयोजन के द्वितीय समय में। संयोजन का अर्थ क्या कहा था? वो नया, हाँ, संयोजन करने नया बंद होने लगा, आवली बीत गई, फिर एक समय। तो संयोजन के द्वितीय समय में जो अनुभाग बांधा गया या दोबारा फिर बंद शुरू हुआ, तो वहां जो अनुभाग बांधा आवली अतिक्रांत उसका संक्रम करने वाले के, उसकी जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि होती है। वृद्धि बताए ना, क्या कहना चाहते हैं? पहले समय से अनुभाग बांधना शुरू किया, संयोजन होना है ना, अनुभाग का बंद फिर या बंद फिर से शुरू होना, उसको संयोजन कहा था। तो संयोजन के पहले समय में जो बांधा, फिर दूसरे समय में बांधेगा तब वृद्धि कहलाएगी। पहले समय में तो हम अवक्तव्य कहेंगे उसको, बाद में दूसरे समय में उसको वृद्धि हानि या जो कुछ है वो कह सकेंगे। उसके हानि और अवस्थान की प्ररूपणा, वो प्ररूपणा हुआ है। अनंतानुबंधी कषाय के समान है। मैंने हानि कैसी कही थी वहां पर? यानी उसने थोड़ा बांधा और फिर कम हुआ, उसका भी घात किया। कम हुए ने घात किया, अकेला बंद कम होना उसको हानि नहीं कहते, घात भी होना चाहिए, अनुभाग का घात होना चाहिए। तो यहां भी संयोजन होना है ने उसके, फिर मिथ्यात्व में जाना बांधना ऐसा ही ले सकते वहां पर भी, ऐसा लगता है। अनादि सत्व वाली नाम कर्म प्रकृतियां, अभी कौन सी ली थी? सादी सत्व वाली। सादी सत्व के लिए अनंतानुबंधी का उसके साथ दृष्टांत दिया। अनादि सत्व वाली नाम प्रकृतियों की जघन्य अनुभाग संक्रम वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होता है? अपने जघन्य अनुभाग सत्कर्म से प्रक्षेप अधिक अनुभाग बांधकर आवली अतिक्रांत उसका संक्रम करने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय के, उक्त प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि होती है। उस प्रक्षेप को अंतर्मूर्त घात कर संक्रम करने वाले के, यानी वो तो कुछ अधिक बांधा फिर उसका भी घात किया। तो कहते उसकी जघन्य हानि होती है। दोनों में से किसी भी एक में उनका जघन्य अवस्थान होता है। जघन्य वृद्धि करके अवस्थित होना या हानि करके अवस्थित होना, उसको जघन्य अवस्थान कहेंगे। निज गोत्र की प्ररूपना अनादिक नाम कर्म प्रकृतियों के समान है। अभी हमने अनादि सत्व वाली देखी थी, वैसे उसको समझना। उच्च गोत्र की प्ररूपना अनंत अनुबंधी के समान है, यानी फिर से उद्वेलना करने के बाद बांधता था, वहां भी वैसा ही लेना है। विसंयोजन करके बाद वो बांधेगा तब की बात करना है। वो तो मिथ्यात्व में जाएगा, बांधेगा उस सब उसमें आ जाएगी। तो जब बांधेगा तो इमेज बहुत अनुभव ज्यादा नहीं बांधेगा, हाँ तो स्टार्टिंग में कम बांधता है उसकी अपेक्षा वहां लेना। हाँ वही बात है, विसंयोजना करता है ना, वो मिथ्यात्व में ही जाना चाहिए, उसकी जो कंडीशन जरूरी है। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ, बाकी कल। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। मयंक भाई।